सर्गाय शनिया भगवाय उदारा विलास हशेक्षित वाम सुखाय हितात्मनो हृत्त प्रणाम च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमान विपुलं प्रयुंते. Upon seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor.
अनुवाद. भगवान के मुस्कुराते और आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी सारी चेतना को खो बैठता है. उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में लीन हो जाती है. इस प्रकार अनिच्छित भी उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती
है. ऐसी भक्ति विराट स्वामी प्रभुपाद. There are three divisions of devotees: first class, second class, and third class.
भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ.
Yes, why don't you just, since everyone here speaks Hindi, just read it, and I'll read myself.
कनिष्ठ श्रेणी का ये सभी भक्त मुक्त हो जाते हैं. श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान न होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकार देखकर भक्त उसके ध्यान में लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है. इस तरह मात्र कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है.
When seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor. His Grace Man Gaurasundara Prabhu has today instructed me very specifically to speak on this particular verse.
Sriman Gaurasundara Prabhu ne mujhe aagya di hai ki main is shlok ke upar pravachan karu,
praying that he will bestow his auspicious blessings upon me. I will try to please him by offering this class at his lotus.
ये प्रार्थना करते हुए कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं ये उनको प्रसन्न करने के लिए ये उनके चरण कमलों में अर्पण करता
हूँ. We are reading the instructions of Lord Kapila Dev.
हम भगवान कपिल देव की शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं.
This particular chapter is entitled The Glories of Devotional Service.
इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग की महिमा.
We find the quality of an advanced devotee.
यहाँ पर भक्ति में आगे बढ़े भक्त के गुण बताए गए.
He is absorbed in the consciousness of Krishna.
वो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं.
Such absorption is the quality that purifies our heart.
इस प्रकार के जो लीन होना है वो हमारे हृदय को शुद्ध बनाता है.
Whatever we do in our devotional life should not simply be done in a ritualistic manner.
भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं उसको सिर्फ एक रीति के रूप में नहीं करना चाहिए.
In every activity, we should very sincerely be struggling to absorb our consciousness in what we are doing.
हम जो भी कार्य करते हैं हमें संघर्ष करना चाहिए कि उसमें हमारी चेतना लीन हो जाए.
Because Krishna manifests himself in the activities of devotional service.
क्योंकि कृष्ण भगवान जो है भक्ति के कार्यों में प्रकट होते हैं.
And to the degree we are able to absorb ourselves in the process, to the same degree Krishna purifies our consciousness.
जितना ज्यादा हम भक्ति कार्यों में लीन होते हैं उतना ज्यादा कृष्ण हमारी चेतना को शुद्ध बनाते हैं.
When we read about Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, how much they were absorbed in every aspect of devotional service.
जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कितने ज्यादा वो लीन रहते थे भक्ति कार्यकलापों में.
Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna, is teaching us how to be a devotee by his actions.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, jo Krishna hai, apne karya se sikha rahe hain kaise bhakt banna chahiye.
And similarly his associates.
Aur unke sahachar bhi.
So we find when Lord Chaitanya would go to the temple of Jagannath, how he would be absorbed in seeing the deity.
हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो कैसे लीन हो जाते हैं भगवान के विग्रह को देखने
में. He and his devotees, they just didn't go and bow down and offer some dakshina and leave.
ऐसा नहीं कि उनके भक्त जाते हैं और प्रणाम करके दक्षिणा लेके बाहर आ जाते.
Rather, they were completely absorbed.
बल्कि वो पूर्ण रूप से लीन हो जाते.
As soon as the conch shell would blow in the morning, Chaitanya Mahaprabhu and his associates would immediately get up and go to the temple of Jagannath.
जैसे ही शंख बजता चैतन्य महाप्रभु उनके सहचर तुरंत उठकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते.
They understood this is Krishna, Balaram, Subhadra.
वो ये समझते कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा.
Sometimes they would stand with unblinking eyes and tears rolling down their faces.
कभी कभी वो भगवान के रूप को देखते रहते बिना पलकी के चपकने के और आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा.
Immersed in the thought.
उनके विचारों में लीन होते.
And how great devotees like Madhavendra Puri, how he worshipped the deity.
कैसे माधवेंद्र पुरी वो कैसे विष्णु की आराधना करते.
He was willing to risk his entire life just to bring some chandan to cool the form of the deity.
और वो अपने जीवन को भी जोखिम उठाने के तैयार थे भगवान के लिए चंदन ले आने के लिए.
There was no question of idol worship.
और ये ऐसा नहीं कि खाली कोई पत्थर की पूजा है.
You do not risk your life and walk 1,000 kilometers for a statue.
आप सारे किसी पत्थर के लिए 1,000 किलोमीटर चलकर नहीं जाएंगे.
He was seeing the supreme personality of God.
वो जो है स्वयं भगवान को देख रहे थे.
He was personally reciprocating with him.
जो कि उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे.
So in the neophyte stage, we may not have this realization.
कनिष्ठ अवस्था में हमारे अंदर ये साक्षात्कार नहीं होगा.
But as we approach Krishna, he reveals himself accordingly.
जैसे हम कृष्ण के सामने प्रकट होते हैं उसी प्रकार से कृष्ण हमारे सामने आते हैं.
If we approach Krishna as a person, then he will reveal himself as a person.
जब हम कृष्ण को व्यक्ति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं.
If we approach him as a piece of stone, he will reveal himself as a piece of stone.
जब हम कृष्ण को पत्थर के रूप में जाते हैं तब कृष्ण हमारे लिए सामने पत्थर के रूप में रहते हैं.
When Chaitanya Mahaprabhu was at Rath Yatra, he and his devotees, how were they looking upon the deity?
जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में थे तो वो और उनके भक्त कैसे विग्रह का दर्शन करते.
How they were dancing, how they were chanting.
कैसे वो कीर्तन और नृत्य करते.
They were having intimate loving pastimes with the deity.
और उनका यह भगवान के साथ बिल्कुल लीला और अंतरंग.
Lord Chaitanya wanted to test Jagannath.
चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की परीक्षा लेते.
So he would go behind the cart.
वो रथ के पीछे रह जाते जामुस्कर.
Just to see is Jagannath remembering me?
देखने के लिए क्या भगवान जगन्नाथ मेरे को याद कर रहे हैं.
Will he continue on his journey to Gundicha without me?
क्या वो मेरे बिना गुंडीचा मंदिर तक चले जाएंगे.
And Jagannath would stop.
और जगन्नाथ भगवान रुक जाते.
And even though thousands of people were pulling the ropes, they would not move.
हजारों लोग रस्सी खींच रहे होते लेकिन रथ नहीं चलता.
They didn't know what to do.
उनको पता नहीं था क्या करना है.
Jagannath would not move his cart. The wheels were locked.
भगवान जगन्नाथ जो है रथ आगे नहीं बढ़ता ऐसे कि पहिए बस फंस गए.
Lord Chaitanya was then satisfied. He came in front of the cart and started dancing in front of Jagannath, and then Jagannath began to move.
जगन्नाथ वो संतुष्ट हुए वो भगवान जगन्नाथ के सामने आए नृत्य करने लगे और फिर रथ चलने लगा.
जगन्नाथ आईज वर लुकिंग अपॉन द ब्यूटीफुल गोल्डन फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु.
भगवान जगन्नाथ की सुंदर आंखें जो है चैतन्य महाप्रभु के सुनहरे रूप को देख रहे.
माउथ वाज एक्सटैटिकली स्माइलिंग.
और वो बहुत सुंदर रूप से मुस्कुरा रहे थे.
टू सी द डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य
महाप्रभु के नृत्य को देखकर.
सो But when we're before the deity and we're dancing and chanting, we're dancing and chanting for their pleasure.
जब हम विग्रह के सामने आते हैं और कीर्तन और नृत्य कर रहे होते हैं तो उनके आनंद के लिए कर रहे होते हैं.
And by this consciousness, we make very rapid advancement.
और इस चेतना से हम बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं.
It is not that we are trying to show our nice dancing and singing talents to other devotees.
ये नहीं है कि हम दूसरे भक्तों को दिखाना चाहते हैं मैं कितना सुंदर गाता हूँ कितना सुंदर नृत्य करता हूँ.
But rather, we are trying to attract the heart of Krishna by our sincere desire to please Him.
बल्कि हम कृष्ण के हृदय को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी इच्छा से प्रसन्न करने की इच्छा से.
So the worship of the deity in the temple is a very important part of attracting the minds of the conditioned souls.
मंदिर में भगवान की विग्रह की आराधना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है मन को भगवान की तरफ लगाने के लिए.
The pure souls see Krishna directly.
जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सब कृष्ण को सीधे सब जगह देखते हैं.
And the conditioned soul gradually learn the process of how to see Krishna.
बद्ध जीव जो है वो धीरे धीरे सीखते हैं कैसे कृष्ण को देखना है.
Therefore, even the greatest Paramahamsas, like Sanatan Goswami, Rupa Goswami, and in other sampradayas, Madhvacharya, Ramanujacharya, even Shankaracharya, they all established temples and deities.
इसीलिए जो भी बड़े-बड़े परमहंस हैं, सनातन गोस्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने भी बहुत बड़े जो है मंदिरों की स्थापना की.
Because they were very much eager, the people become attracted to the form of the Lord.
कि वो बहुत उत्सुक थे कि लोग भगवान के रूप के प्रति आकर्षित
हों. And in Vrindavan, when Sanatan Goswami built his temple, it was the highest, most beautiful temple.
जब वृंदावन में सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनाया तो वो सबसे ऊंचा व सबसे सुंदर मंदिर था.
And Srila Rupa Goswami built the highest, most beautiful temple.
और रूपा गोस्वामी ने सबसे ऊंचा सबसे सुंदर मंदिर बनाया.
The idea is to make such a wonderful facility to get people to take serious who is living within this temple.
ये उद्देश्य ये है कि लोग गंभीरता से पता चले कि कौन व्यक्ति यहाँ पर निवास कर रहा है.
It took years and years and so much efforts to build Govinda Ji Mandir.
गोविंद जी मंदिर बनाने में कई वर्ष लगे.
And such pure, morally high life souls who were so deeply philosophical, they were the ones behind it.
और जो बहुत ही दार्शनिक रूप से जो भक्त थे वो उनके लिए जिम्मेदार थे.
So naturally, when a person comes to the temple, he will think, who is this built for?
तो कोई व्यक्ति जब मंदिर में आएगा तो कहने लगेगा ये किसने बनाया.
We must take very seriously.
हमें गंभीरता से उसको सोचना चाहिए.
From a material standard, it's very amazing.
वर्ते किसी के लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है.
An example.
एक उदाहरण.
In South Africa.
दक्षिण अफ्रीका में.
Srila Prabhupada's devotees built magnificent temple.
श्री प्रभुपाद के भक्तों ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया.
They probably spent maybe about 50,000 rupees. To buy the deity.
मूर्ति को खरीदने करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए खर्च किए.
And about 10 crores to build a house for the deity.
और घर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए.
So one is thinking, how is this?
एक सोचेगा ये कैसे?
By material standards, if you're thinking he's a piece of marble, then it doesn't make sense.
अगर आप सोचते हैं कि मूर्ति सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है, तो ज़्यादा अर्थ नहीं होता.
But if you understand how the Lord has been invoked to enter into this form of the Lord, then it's Krishna. It's not, we cannot judge by some material standards.
लेकिन अगर आप समझोगे कि ये जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसको भौतिक स्तर पर नहीं समझो मानोगे.
And in this world, everyone is attracted to something beautiful.
और इस दुनिया में कोई कोई सुंदर चीज से आकर्षित होता है.
And our minds are very much absorbed in what is beautiful.
और हमारा मन कोई भी सुंदर चीज के प्रति बहुत आकर्षित होता है.
Men and women, they decorate themselves so elegantly just to attract people's minds.
पुरुष और स्त्री बहुत सुंदर रूप से अपने आप को सजाते हैं दूसरों के मन को आकर्षित करने के लिए.
in the United States of America, which in many ways sets the trends of materialistic society, there is an event called the Academy Awards.
America mein jo ki jagah hai jahan se bahut sare pravritti shuru hote hain, ek Academy Award hota hai,
where they give these trophies of awards. It's considered the highest award for entertainers.
जो कि एक ट्रॉफी दी जाती है, जो कि सबसे ऊंचा जो है इनाम माना जाता है मनोरंजन करने वालों को.
And the whole talk of the entire country is what everyone was wearing on that night.
और पूरी बातचीत यही होती है कि किसी ने क्या कपड़े पहने थे उस दिन.
It's true. The television, the radio, the newspapers, the magazines, they're all talking about what this actress was wearing and what this actor was wearing.
और न्यूज़पेपर टेलीविजन सब में याद है कि ये जो एक्टर है एक्ट्रेस है क्या वस्त्र धारण किए हुए थे.
They spend hundreds and thousands of dollars sometimes just on a dress and jewelry.
कई बार हजारों डॉलर वो खर्च करते हैं वस्त्रों पर और आभूषण पर.
And most people who watch the show on international television, they don't care who wins the awards. They just want to see what everyone is dressed like.
और अधिकांश लोग जो देख रहे थे वो ये नहीं चाह वो नहीं कि कौन क्या कौन जीत रहा है, वो ये देख रहे हैं कि किसने कैसे वस्त्र पहने.
And according to how they are dressed, that sets the fashion for the whole nation.
और कैसे उन्होंने वस्त्र धारण किए तो पूरे देश के लिए फैशन हो जाता है.
So this is human nature.
ये मानव स्वभाव है.
When I was a young boy, the President of the United States and his wife, whatever they would wear, that would be the fashion of the whole nation.
जब मैं नौजवान था उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट उनके पत्नी जो वस्त्र पहनते वही फैशन हो जाता.
And even in India, when you see these marriages, people dress so crazy.
भारत में भी हम देखते हैं कि विवाह में लोग कितने पागल होते हैं.
So this is the propensity of a conditioned soul to be attracted to a beautiful person who is dressed very nicely.
ये बद्धजीव की प्रवृत्ति है कि उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना जितने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए.
So Krishna is so merciful. He comes down to the level that we can relate to him.
कृष्ण बहुत दयालु हैं. वो उस स्तर पर आते हैं जिसे हम भी उनके साथ आदान प्रदान कर सकते.
Therefore in the temple we dress him very very nice.
इसलिए मंदिर में भगवान को बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है.
And when Krishna is worshipped and dressed and decorated so nicely, people are very much attracted.
और जब कृष्ण बहुत सुंदर सजाए जाते हैं तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं.
We absorb our consciousness in the forms of the Lord.
हम भगवान के रूप में अपनी चेतना को लीन कर देते हैं.
And that absorption purifies us.
और उससे हम शुद्ध हो जाते हैं.
It's like Śrīla Prabhupāda, once when he came to New Vrindavan, he looked at Shri Radha Vrindavan Chandra and he had tears in his eyes. He was so much ecstatic to see Radha and Krishna.
Jab Śrīla Prabhupāda New Vrindavan mein aaye tab unhone Radha Vrindavan Chandra ke darshan karne par unki aankhon se aansu behne lage.
What he was seeing is something that we were not seeing.
Wo jo cheez dekh rahe the wo hum nahi dekh pa rahe.
But he told us that Radha and Vrindavan Chandra, they are so merciful.
Wo kehne lage ki Radha aur Vrindavan Chandra bahut dayalu hain.
They have appeared like the most beautiful American boy and girl, just to attract the hearts of all the Americans.
सारे अमेरिकन को आकर्षित करने के लिए राधा और कृष्णा एक अमेरिकन युवक और युवती के रूप में प्रकट हुए.
And in Paris, he named the deities Radha, Paris, Ishwara.
पेरिस में उन्होंने डीटी का नाम रखा राधा पेरिस ईश्वर.
He said throughout the world. The French ladies of Paris are very famous for being beautiful.
पूरी दुनिया में फ्रेंच की स्त्रियां जो है सुंदर होने के लिए बहुत मशहूर होती हैं.
They are always very much trying to attract the hearts of men from everywhere.
वो सब जगह से पुरुष के मन को आकर्षित करना चाहते हैं.
But Srimati Radharani, she has appeared as the most beautiful French girl.
Srimati Radharani सबसे सुंदर फ्रेंच युवती के रूप में प्रकट हुई.
And she has appeared here in Paris in her most beautiful form just to attract the heart of Krishna.
और यहाँ वो पेरिस में प्रकट हुए कृष्ण के मन को आकर्षित करने के.
And Krishna has appeared as the most beautiful French boy.
और कृष्ण जो सबसे सुंदर फ्रेंच युवक के रूप में.
And together they will attract all the French people.
वहाँ मिलकर सब प्रेम लोगों को आकर्षित करेंगे.
Therefore, Radha Paras Ishwara. So Srila Prabhupada was very concerned that the deities be worshipped with great, great devotion. And that the standard of the worship be very strict. Because if it is not very strict, then people will think it to be idol worship. Srila Prabhupada explained that the difference between statue and deity worship. He explained there was a big statue of a famous political leader in the streets of Calcutta. And the only worship he was getting all year was the pigeons. They were making their offerings on him every day. Does anyone have any questions? What kind of offerings pigeons? And once a year, on the birthday of that person, the municipal brushes that brush the streets, they would give him abhishek by just rubbing all the pigeon stool off him. And then thousands of people would gather around and they would put big garland on him. And then the rest of the year he was given to the worship of the pigeons. So this is idol worship. But if we're actually understanding that God is everywhere, that God is merciful, just to help us to focus and absorb our attention on Him and offer personal services to Him, the Lord can manifest Himself in the form of the Murti.
हमारे मन को केंद्रित करने के लिए और हमारे आराधना को स्वीकार करने के लिए भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं.
And if it is performed very strictly, with great care and devotion, then when people come, they can understand that these people are actually seeing God here.
और अगर बड़े ध्यान से आराधना की जाती है तो जब लोग दर्शन के लिए आते हैं तो वो समझेंगे कि ये लोग उनको भगवान देख रहे हैं यहाँ पर.
So this is very important.
ये बहुत महत्वपूर्ण है.
We want to absorb our own minds and we want to absorb everyone's.
हम अपने मन को लीन करना चाहते हैं और दूसरों के भी मन को उसमें लीन करना चाहते हैं.
Also within a community, Krishna is supposed to be the center of all interrelationships.
और एक समुदाय में जो है कृष्ण जो केंद्र होने चाहिए सब रिश्तों के.
So the deity is natural that everyone lives only for him.
स्वाभाविक है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ विग्रह के लिए जीवन बिता.
Just like in Bombay, to the degree everyone is living for Radha Gopinath and working together for Radha Gopinath, we are all united and we're all Krishna conscious.
जैसे बॉम्बे में जो है जितना ज्यादा लोग श्री राधा गोपीनाथ के लिए कार्य करते हैं और एकत्रित रहते हैं उसी तरह से हम एकत्रित सेवा कर सकते हैं.
That focus is very sacred.
वो केंद्र बनाना बहुत पवित्र है.
Very unifying and very absorbing.
उससे एकत्रीकरण भी होता है और चेतना भी लीन हो सकती है.
Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees would visit various temples. How they were absorbed in worshipping and loving the deities. So many of you have the Murti in your homes. This is how you should feel. I remember in Udupi, one time they offered a crown to Udupi Krishna. He's about this big. They offered him all diamonds. It cost 2 crores. Hare Krishna. So people were criticizing. What are they doing? They're putting 2 crores of rupees on this deity's head. could be using this money to be feeding poor people.
They
could be using it to build hospitals. Why are they wasting it like this? So this was in newspapers. So one of the acharyas of this mat, his name was Palimar Mat Swami. Now he's probably almost 90 years old. He gave a very nice example. He said, when the Prime Minister goes from one place to another, if you take everything into consideration just for his security, they probably spend crores of rupees. All the military, the special planes, the special arrangements, holding up the airports, canceling flights. Literally, any head of state, president of any country, when they travel, they spend crores of rupees just for his security. And he said, in here, as Prime Minister of one little tiny speck of one country, of one planet within the universe, and there are millions and billions of such universes. And when all these heads of states spending crores and crores of rupees just to for their safety, no one complains. But Krishna, he is the supreme prime minister, not of one country, not of one planet, not of one universe, not of just the material existence, but all creation. And once in 10 years we buy a crown and everyone is complaining. Could be spending hundreds and thousands of crores every day, it's not enough for Krishna. We should simply do what we can. And if you water the root of the tree, automatically the tree is satisfied. So this is the consciousness of absorbing ourselves and understanding that Krishna is a person. Krishna has appeared in the murti just to reciprocate with our love. Therefore, it should not be done ritualistically. It should be done very personally, very strictly, and very lovingly. So in your home, you should have this consciousness. To the degree you have this consciousness, to that degree you will become purified. When you invite Krishna into your home, do not think that it's just a formality. It's a serious commitment. And as you approach the Lord will purify your heart accordingly. It is explained here that the worship of the deity is one of the five very, very important principles of devotional service. Through Rupa Goswami, Lord Chaitanya explained these five. If we follow them carefully, we will naturally make very, very rapid advancement. The first is to chant the holy names of the Lord. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
This is the Yuga Dharma. Ultimately, everything in devotional service is aimed at establishing the proper consciousness by which we can chant his holy names.
अंततः भक्ति हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य है सही चेतना को स्थापित करना जिससे हम नाम जप कीर्तन कर सकें.
Because the name of the Lord is the form of the Lord that we can take with us everywhere and anywhere.
भगवान का नाम रूप जो है वो ऐसा विग्रह है जिसको हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं.
There are no hard and fast rules.
इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं है.
Whether you're in the bathroom or whether you're in your bed trying to sleep, any situation, even if you're unclean, you can't worship the deity in those situations. But you can always chant his name.
आप किसी भी जगह पर हो, चाहे बाथरूम में हो या सोने का प्रयास कर रहे हो, अगर आप अशुद्ध हो तो भी आप भगवान का नाम ले सकते हो.
And the Lord's name is invested with all of his potencies.
और भगवान के नाम में उसकी सारी शक्तियां निहित हैं.
The Lord's pastimes, qualities, form, the Lord's mercy is all contained within his name.
भगवान के नाम में सब रूप लीला गुण सब कुछ उसी में.
The holy abode of Vrindavan is within the name of Krishna.
भगवान कृष्ण के नाम में वृंदावन धाम है.
So we should chant very, very sincerely.
हमको बहुत अच्छे दिल से नाम जप करना चाहिए.
What is the meaning of Yuga Dharma?
Yuga Dharma का अर्थ क्या?
It means in this particular age, it's the only means by which we can attain that most essential principle of pure consciousness.
इसका मतलब यह है कि इस युग में यही तरीका है जिससे कि हम अपनी चेतना को शुद्ध बना सकते.
हरिनाम हरिनाम हरिनामेव केवलम करो नास्तेव 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 कथिर अन्यथा. There's no other way.
और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं.
And because people are so fallen in this age,
क्योंकि लोग बहुत पतित हैं इस युग में,
a process by which anyone and everyone can do without difficulty.
एक तरीका है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है बिना किसी मुश्किल के.
Even a child loves to chant and dance.
एक छोटे बच्चे को भी आनंद होता है कीर्तन और नृत्य में.
And thus their consciousness becomes purified.
और इस तरीके से उनकी चेतना जो है शुद्ध हो जाती है.
And everything we do, it's real spiritual perfection is to the degree we are chanting the name as we are doing it.
और कोई भी चीज करते हैं उसकी पूर्णता यह है कि कैसे हम नाम जप कर रहे हैं.
According to our Vaishnava scriptures, any offering is accompanied by the chanting of the holy name.
और वैष्णव शास्त्र में तो कोई भोग अर्पण करते हैं उसके साथ भगवान का नाम कीर्तन होता है.
So Lord Chaitanya and his associates, by their example, they taught that japa should be done very strictly according to regular minimum rounds of Harinam.
Chaitanya Mahaprabhu के प्रचार में सिखाया है कि नाम जप जो है वह सख्ताई के साथ किया जाना चाहिए और गिनकर किया जाना चाहिए.
Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they would chant minimum 2 lakhs every day.
Rupa Goswami, Sanatan Goswami, 2 lakh Bhagwan ke naam kam se kam jap karte.
Raghunath Das Goswami also.
Raghunath Das Goswami.
Very strict.
Bahut saktai se palan karte.
Haridas Thakur, he wouldn't eat or drink until he completed 3 lakhs of names every day.
Haridas Thakur jo hai, jab tak 3 lakh jap pura nahi karte, tab tak kuch khate nahi, kuch peete nahi.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu would also very carefully count his japa.
Sri Chaitanya Mahaprabhu bade dhyan purvak apna jap ginti karte.
Just to teach by example how important it is.
Ye sikhane ke liye kitna zyada ye mahatvapurna hai.
So when we are chanting, there are basically 3 types of chanting. There is japa, bhajan and kirtan.
Jab hum Bhagwan ka naam lete hain to 3 prakar hai, japa, bhajan aur kirtan.
They are all very important. Sankirtan is the congregational chanting and dancing where we are together chant very loudly.
Sankirtan ka matlab hai jab hum ek saath hote hain aur bade uchch swar mein gaate hain kirtan aur nritya.
This creates social unity.
Isse samajik ekatva bhavna jagrit hoti hai.
In the age of quarrel and hypocrisy.
Kyunki kaliyug ka yug hai jisme jhagda hota hai.
It also purifies the entire world.
Isse pure duniya shuddh ho jati hai.
Because the name is resounding everywhere.
क्योंकि सब जगह पर नाम गूंज रहा है.
Purifying all living beings.
सब जीवात्माओं को शुद्ध बना रहा है.
And it is also a very unique and essential way of absorbing our consciousness in the holy name.
और ये एक बहुत ही जरूरी तरीका है अपनी चेतना को भगवान के नाम में लीन करने के लिए.
So those who want to make actual progress in Krishna consciousness must absorb themselves in regular japa and kirtan amongst Vaishnavas.
जो लोग अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहते हैं उनको नियम पूर्वक अपने जपों में और कीर्तन में अपनी चेतना को लीन करना चाहिए.
If we are not absorbing ourselves in these two types of chanting, then we will not make proper spiritual progress.
अगर इस तरह से दो प्रकार जप और कीर्तन में अपनी चेतना को नहीं लगा रहे तो हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे.
But as we say, the key to all these principles is not the mechanical process, but the absorption of the consciousness within the process.
ये तो मुख्य चीज और तरीका ही नहीं है बल्कि कितना हम अपनी चेतना को उसमें लगा रहे हैं.
As we are chanting, as we are worshipping the deities, we should be absorbing our consciousness in Krishna.
जितना हम जप कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो अपनी चेतना को कृष्ण में लगाना चाहिए.
And this takes effort for a neophyte devotee.
और एक नए भक्त के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है.
For an advanced devotee, automatically you're absorbed.
और जो भक्ति बहुत आगे बढ़े हैं, उसके लिए अपने आप उनका मन लीन हो जाता
है. मुकुंद सरकार. He was the physician for the royal king.
वो राजा के लिए वैद्य थे.
When someone came to shade the king with a peacock fan,
जब कोई व्यक्ति राजा को जो है मोर का पंख लेकर आया,
immediately upon seeing peacock feather, he was so absorbed in Krishna he fell unconscious down to the bottom of the stage.
और जब उन्होंने मोर का पंख देखा तो कृष्ण का स्मरण होते हुए तुरंत गिर पड़े स्टेज के नीचे.
That is absorption.
इसको बोलते हैं लीन होना.
Instantaneous and spontaneous.
बिल्कुल आकस्मिक और स्वाभाविक.
When Chaitanya Mahaprabhu would see a cow, he would fall unconscious in remembrance of Krishna.
चैतन्य प्रभु जब एक गाय को देखते तो कृष्ण का स्मरण होते ही वो बेहोश हो जाते.
When he would see the ocean, he would be absorbed in thinking of the Jamuna.
जब वो समुद्र को देखते तो वो यमुना नदी के विचारों में लीन हो जाते.
When he would see a tamal tree, he would just think of Krishna's color and become completely ecstatic and all transformations would manifest in his body.
जब एक तमाम वृक्ष देखते तो उनको कृष्ण का वर्ण याद आता और सारे प्रेम के लक्षण उनमें प्रकट हो आते.
Madhavendra Puri, when he would see a dark cloud, he would immediately fall unconscious and then start weeping and crying and trembling, his hair standing on end.
महावेंद्र पुरी जब एक बादल को भी देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते.
What to speak of when they would chant the holy names.
और जब भगवान का नाम लेते हैं तो कहना ही क्या.
So this is absorption.
इसको बोलते हैं लीन होना.
So we are not on this pure platform.
हम इस शुद्ध स्तर पर नहीं है.
So it is our tapasya, it is our austerity to force absorption into the virtuous activities of Krishna consciousness.
हमारे लिए तपस्या है कि कृष्ण भावना के कार्यों में जबरदस्ती इस तरह से अपने मन को लीन करना.
As we're chanting, Krishna is dancing on our tongue.
जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं हमारी जीवा पर.
And if we just become attentive, he dances within our heart.
अगर हम ध्यान देंगे तो वो हृदय में भी नृत्य करेंगे.
But our mind is wandering off to so many other types of songs and so many other thoughts.
लेकिन हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा है दूसरे गीतों में और दूसरे विचारों में.
हरे कृष्ण. Where is our absorption?
कहां हमारा मन लीन हो रहा
है? In this material world, Rupa Goswami explains, people are very absorbed in the opposite sex.
रूपा गोस्वामी बताते हैं भौतिक दुनिया में लोग जो पुरुष स्त्री संबंध के विचारों में बहुत लगे रहते हैं.
Manobhiram means with the same absorption that a young man is absorbed in a young woman and a young woman is absorbed in a young man, if we just absorb ourselves that much in Krishna, how purified we will become.
जिस तरह से एक नवयुवक नवयुवती के विचारों में नवयुवती नवयुवक के विचार में रहता है, उसी तरीके से अगर हम कृष्ण में मन लगाएंगे तो कैसे हम शुद्ध हो जाएंगे.
So it is very, very important that we have to force our consciousness as a tapasya to absorb itself in the sound of Krishna's name. In the beautiful form of Krishna's deity.
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तपस्या के रूप में अपने मन को जबरदस्ती भगवान के नाम ध्वनि में और भगवान के विग्रह में लगाना चाहिए.
And to the degree we struggle to absorb ourselves in that sound vibration, to that degree Krishna will manifest a purified state of consciousness.
और जितना हम संघर्ष करेंगे उतना ही ज्यादा जो है हमारे कृष्ण प्रकट होंगे, हमारी चेतना को शुद्ध बनाएंगे.
The difference between ritualistic chanting that is mechanical and real chanting that pleases Krishna is our endeavor to absorb our consciousness in the sound of Krishna's names.
जो रीति रिवाज के रूप में जब किया जाता है या सच्चा जब तो उसके जिन अंतर यह है कि कितना हम प्रयास करें अपने मन को उस ध्वनि में लगाने के लिए.
The second principle is to associate with devotees and serve them as far as possible.
दूसरा सिद्धांत है भक्तों का संग करना और जितना हो सके उनकी सेवा करना.
This should also be a process by which we absorb our consciousness.
ये भी तरीका होना चाहिए जिससे कि हम अपनी चेतना को लीन करें.
Preliminary to any other spiritual progress, we must have the association of sincere devotees.
सबसे मूल चीज है कोई भी अध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भक्तों का संग प्राप्त करना.
The association of devotees creates an environment by which we can practice real spiritual life.
भक्तों का संग जो ऐसा माहौल पैदा करता है जिससे हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकते
हैं. श्री प्रभुपाद warned us, as did Srila Bhakti Siddhanta Saraswati.
Shri Prabhupada and Srila Bhakti Siddhanta Thakuram put chetana chetavani di.
Anyone who thinks that they can make spiritual advancement without proper association of devotees is insane.
Jo vyakti sochta hai ki bina bhakton ke sang ke pragati kar sakta hu wo pagal hai.
We read about great Babaji's or even someone like Haridas Thakur who living in a cave in a secluded place is immersed in chanting the holy name.
कई बाबा जी के बारे में सुनते हैं या हरिदास ठाकुर के बारे में सुनते हैं जो गुफा में रहकर भगवान का नाम जप करते थे.
No, we cannot imitate them.
हम उनकी नकल नहीं कर सकते.
Maya will certainly steal away our intelligence.
माया हमारी बुद्धि को छीन लेगी.
And even Haridas Thakur, whenever he had the chance, he was in the association of Advaitacharya, Srivas Thakur, Lord Chaitanya Mahaprabhu. He loved the association.
और हरिदास ठाकुर भी जब भी अवसर मिलता तो अद्वैत आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह भक्तों के संग में आने का प्रयास करते
हैं. In the purified state, you cannot give up the association of devotees. It becomes a spontaneous absorption of your love.
जब शुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो भक्तों का संग त्याग नहीं सकते, वो स्वाभाविक हो जाता है.
But in the neophyte stage, because of our egoistic mind, sometimes we are not able to appreciate the association.
जब हम कनिष्ठ अवस्था में होते हैं तो हमारे अभिमानी मन के कारण कभी हम भक्तों के संघ का महत्व नहीं समझ पाते.
But it is essential.
लेकिन ये आवश्यक है.
To absorb ourselves in that association.
उस संघ में अपने आप को लीन करना.
And that comes through service.
और वो जो है सेवा के द्वारा प्रकट होता है.
The importance of association is so much declared in the holy scriptures.
और जो शास्त्र में बहुत उसके संग की महिमा बताई गई है.
चैतन्य महाप्रभु said, if you want to be pure, you have to associate with devotees and not associate with materialistic people. That's the essence.
जगन्नाथ प्रभु बताए अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं तो भक्तों का संग करो, अभक्तों का संग त्याग करो.
जय भारत, he was actually on the preliminary stages of bhava.
जड़ भरत जो है वो करीब करीब भाव अवस्था तक पहुंच गए थे.
He was living Gandaki, I mean banks of Gandaki river.
वो गंडकी नदी के
हिमालय
तट पर रहते थे हिमालय में.
All alone.
अकेले.
When he was thinking of Krishna, his eyes were swelled with tears, his hair stood on end, and he would tremble.
जब वो कृष्ण के बारे में सोचते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते, शरीर कांपने लग जाता और बाल खड़े हो जाते.
In such an advanced state, when he saw that little baby deer helpless, he became so much attached to helping that deer.
और इस अवस्था में भी जब उन्होंने छोटे हिरण को देखा तो बिल्कुल आसक्त हो गए उसको मदद करने के लिए.
To serve that deer, he gave up all of his sadhana.
और हिरण की सेवा करने के लिए सब साधना त्याग कर दिया उन्होंने.
Now you may think that it was out of compassion.
आप सोचेंगे ये तो कृपा की भावना से.
But factually, the deer would have died if he didn't take care of it.
अगर उसका ख्याल नहीं रखते तो हिरण की मृत्यु हो जाती.
But that's the way Maya works.
इसी तरीके से माया कार्य करती है.
She puts us in a situation that we succumb to her illusions.
और ऐसी स्थिति रखती है कि हम उसके प्रलोभन में गिर पड़ते हैं.
Now if Bharat Maharaj was living in a brahmachari ashram.
अगर भरत महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे होते.
Or if he was living in a congregation of devotees he was associating with.
अगर वो भक्तों के संग में रहते थे सामूहिक रूप से.
They would have said, Bharat Prabhu, don't be so attached to this deer. Check your rounds.
लोग बोलते हैं तो भरत प्रभु हिरण की मिली आसक्ति में तो ठीक से जप करो.
And due to the social pressure, he would have definitely started chanting his rounds.
और सब लोग के बोलने के प्रेशर के कारण वो से जप करना शुरू कर दे.
People would have seen him. I don't see any of your counting beads moving.
मैं देख रहा हूँ कि आपके मोती नीचे नहीं आ रहे.
I don't even see you in Mangal Arati. You're so completely absorbed in this deer. This is Maya. We'll help you take care of the deer. You come and chant and dance with us. Definitely, he would have said, oh, yes, yes, you are correct. So even if you are on such an elevated platform, Maya will trick you if you don't have the association of devotees to
preach.
But what is very important is how to associate with devotees. Vrindavan Ananda Prabhu told me to speak on this subject today. And it is appearing of its own accord. Association of devotees means in a mood of service. Every other devotee is Prabhu and I am Das Das Anu Das. If we are not in that consciousness, then we're not really associating with devotees. Everyone is servant, no one is master. The various positions we may take in the Varnashram system is all just a particular way to serve.